ಕೃತವನ್ ಶ್ರೀವಾಲೇ ಕೀ ಜಯ. ಕೃಪಾ ಸಮಿಸ್ವಾಮಿ ಕಹಿನ ಕಾ ವಿಚಾರ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಸಬ್ಕೆ ಊಪರ್ ಭಗವಾನ್ ಕೀ ಸಮಾನ ಭಾವ ಸೆ ಅಪಾರ ದಯಾ ಹೈ ಜಿಸ್ಕೀ ಕೋಯಿ ಸೀಮಾ ನಹೀ ಹೈ. ಉಸೆ ದಯಾ ಕೆ ದೋ ಭೇದ ಹೈ, ಏಕ್ ತೋ ಸಾಧಾರಣ ದಯಾ ಜಿಸೆ ಭಗವಾನ್ ಸಬ್ ಲೋಗೋ ಕೋ ಸಬ್ ಕುಛ ವಸ್ತು ದೇತೆ ಹೈ, ವೋ ಸಬ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ತೀ ಸಾರೇ ಜೀವೋ ಕಾ ಭರಣ ಪೋಷಣ ಕರ್ತೆ ಹೈ ಔರ್ ಪಾಲನ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ಯೆ ತೋ ಸಮಾನ ದಯಾ ಸಬ್ ಕೆ ಊಪರಿ ಹೈ. ಜೆಸೆ ರಾಜಾ ಕೆ ರಾಜ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕೆ ವಹಾ ಖಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಕೈದಿಯೋ ಕೋ ಭೀ ರಾಜಾ ದೇತಾ ಹೈ, ತೋ ಇಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಕೆ ವಹಾ ಜೋ ಮಹಾನ್ ದುಃಖೀ ಸೆ ದುಃಖೀ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಸಮಾನ ಭಾವ ಸೆ ದೇನೆ ವಾಲಿ ಚೀಜ್ ತೋ ಸಬ್ಕೋ ದೇತೆ ಹೈ. ಜೆಸೆ ಬಿಸ್ತರನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ, ವಾಸ ಕರನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭೂಮಿ, ಬಿಸರನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಆಕಾಶ ಔರ್ ಹವಾ ಔರ್ ಪಾನಿ ಔರ್ ರೋಶನಿ, ಬಿನಾ ಪೀಸಾ ಸಬ್ಕೋ ಮುಫ್ತ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ದೇತೆ ಹೈ. ಯಾ ಸಮಾನ ದಯಾ ತೋ ಸಬ್ ಕೆ ಊಪರ್ ಹೈ. ಸಬ್ ಜೀವೋ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ದೇತೆ ಹೈ, ಭರಣ ಪೋಷಣ ಕರತೆ ಹೈ. ಇಸ್ ವಾಸ್ತೆ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ ವಿಶ್ವಂಭರ ಹೈ ಔರ್ ಸಬ್ಕೆ ಧಾತಾ ಹೈ. ಸಬ್ಕೋ ಧಾರಣ ಕರನೆ ವಾಲೆ ಹೋಣೆ ಸೆ ಸಬ್ಕೆ ಧಾತಾ ಹೈ, ಧಾರಣ ಪೋಷಣ ಕರನೆ ವಾಲೆ ಹೋಣೆ ಸೆ ಧಾತಾ ಹೈ. ತೋ ಸಬ್ಕಾ ಭಗವಾನ್ ಪೋಷಣ ಕರತೆ ಹೈ, ಸಬ್ಕೋ ಧಾರಣ ಕರತೆ ಹೈ ಔರ್ ಸಬ್ಕಿ ರಕ್ಷಾ ಕರತೆ ಹೈ. ಯಾ ತೋ ಸಮಾನ ಭಾವ ಸೆ ಸಬ್ಕೆ ಊಪರ್ ದಯಾ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೈ. ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕಿಸೀ ಸೆ ಭೀ ಕೋಯಿ ರೋಶನಿ ಲೇ, ಜೆಸೆ ಬಿಜಲಿ ಕಿ ರೋಶನಿ ಲೇತೆ ಹೈ ತೋ ಉನ್ಕಾ ಪೈಸಾ ದೇಕ ಭೀ ರೋಶನಿ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ಜೆಸೆ ಜಲ ಲೇವೆ ಪಾನಿ ಲೇವೆ ತೋ ಕಲ್ ಕಾ ಜೋ ಪೈಸಾ ದೇನೆ ಸೆ ಜಲ ಮಿಲೇ. ಜೆಸೆ ಬಿಜಲಿ ಕೋ ಪಂಖ ಲಗಾಯಾ ಜಾ ಹವಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಪೈಸಾ ಖರ್ಚ ಕರನೆ ಸೆ ಹವಾ ಮಿಲ್ತಿ ಹೈ. ಇನ್ ತೋ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ತರಫ ಸೆ ಜೋ ಹವಾ ಮಿಲೇ ವೋ ಶುದ್ಧ ಹವಾ ಹೈ ಔರ್ ವೋ ಬಹುತ್ ದಾಮೀ ಹೈ, ವೋ ಸಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಮಾನ ಹೈ. ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಮಾ ಕಿ ಜೋ ರೋಶನಿ ಮಿಲೇ ವೋ ಸಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಮಾನ ಹೈ. ಆಕಾಶ ಸೆ ಜೋ ಜಲ ಬರ್ಸ ಹೈ ವೋ ಸಬ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಸಮಾನ ಹೈ, ಕೋಯಿ ಭೇದಭಾವ ನಹೀ. ದೂಸರಿ ಜೋ ದಯಾ ಹೈ ಏಕ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಹೈ. ತೋ ಭಗವಾನ್ ನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಹೈ ಔರ್ ಸಬ್ಕೆ ಜೆಸೆ ಕರ್ಮ ಉನ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಹೀ ಭಗವಾನ್ ಆಪಣೆ ವಿಧಾನ ಕರೆ ಹೈ. ಕರುಣಾಕ್ಕೆ ಫಲ ಕಾ ದಾತಾ ಹೈ, ಪುಣ್ಯ ಕೋ ಜೋ ಫಲ ಹೈ ಸುಖ ಔರ್ ಪಾಪ ಕೋ ಫಲ ದುಃಖ. ಔರ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಿ ಯಾ ಭಾಷಾ ಹೈ ಕಿ ಮನ್ ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕೆ ಮನ್ ಸುಖ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಮನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮೇ ದುಃಖ ಹೋತಾ ಹೈ. ಇಸ್ಲಿಯೆ ಮನ್ ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮೇ ರಾಗ ಜಿಸ್ಕೋ ಆಸಕ್ತಿ ಕೋ ವೋ ಹೋತಿ ಹೈ ಔರ್ ಮನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕೆ ಬೀಚ್ ಕೆ ವಹಾ ದ್ವೇಷ ಹೋತಾ ಹೈ, ದುಃಖ ಹೋತಾ ಹೈ. ತೋ ಮನ್ ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಜೊ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ದಯಾ ಭರೀ ಹುಯಿ ಹೈ ಔರ್ ಮನ್ ಕೆ ಜೊ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹೋತಾ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಭೀ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ದಯಾ ಭರೀ ಹುಯಿ ಹೈ. ಹಮ್ ಲೋಗ ಜೊ ಹೈ ಸೊ ಮನ್ ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮೇ ತೋ ದಯಾ ಮಾಂಗತೆ ಹೈ ಔರ್ ಮನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಕೋಪ ಮಾಂಗತೆ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಹಮಾರಿ ಸಮಝ ಕಿ ಗಲತಿ ಹೈ. ಮನ್ ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮೇ ಜೊ ಸುಖ ಪ್ರತೀತ ಹೋತಾ ಹೈ ಔರ್ ಮನ್ ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಮೇ ಜೊ ದುಃಖ ಪ್ರತೀತ ಹೋತಾ ಹೈ, ಯೇ ಸುಖ ಔರ್ ದುಃಖ ಅಪನೆ ಕಿ ಹುಯೆ ಕರ್ಮೋ ಕಾ ಫಲ ಹೈ. ಔರ್ ಭಗವಾನ್ ತೋ ನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಹೈ ಔರ್ ಕರ್ಮೋ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಉನ್ಕೆ ಸುಖ ಔರ್ ದುಃಖ ಕಾ ವಿಧಾನ ಕರತೆ ಹೈ. ಔರ್ ಸುಖ ದುಃಖ ಕಿ ಭಾಷಾ ಜೊ ಹೈ ये अपनी मानी हुई है, मन के अनुकूल में सुख मान लिया गया, प्रतिकूल में दुख मान लिया गया। अरे वो अनुकूलता प्रतिकूलता है, वो भी हमारी मानी हुई है। अनुकूलता के बीच के मन जो हमारे को सुख प्रतीत होता है, उसमें जो भगवान की दया है, उससे भी बढ़कर के भगवान की दया प्रतिकूलता में है, किंतु वो हमारे को प्रतीत नहीं होती। ये बात हमारे समझ में आ जाए कि मन के जो प्रतिकूल होता है वो भगवान की विशेष दया है, किंतु हम लोगों को प्रतिकूलता में क्या होता है, मन में विकार पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है प्रतिकूलता में, भय पैदा होता है प्रतिकूलता में, भय पैदा होता है प्रतिकूलता में, ईर्ष्या पैदा होती है प्रतिकूलता में, दुख होता है प्रतिकूलता में। इस प्रकार से भी समझो कि नाना प्रकार के विकार पैदा होते हैं और हम उस विकार से विकार ही होकर के मन दुखी हो जाते हैं। इस विषय में ये बात हम समझ ले रहे कि वो ये इसमें तो भगवान की मंगलमय दया भरी हुई है, विशेष दया है प्रतिकूलता के मां। कोई भी प्रतिकूल काम आगे प्राप्त हुआ तो भगवान की स्मृति होती है कि हे हरि, हे वो, हे भगवान, हे नाथ, एक प्रकार से इस दुख से बचाओ, तो भगवान की स्मृति हुई। और ये भी विचारने से ज्ञान होता है कि ये दुख क्यों प्राप्त हुआ है, कि अपने पाप का फल है, तो भविष्य में पाप नहीं करना चाहिए। मान लो कि हमारे कोई बीमारी हो गई, बीमारी के मां हम दुख हो रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान ने जो बीमारी भेज करके बड़ा हमारा उपकार किया है। एक तो ये है कि इस बीमारी के भोग लेने से हमने जो पाप किया था वो हमारे सिर पर एक भार था, तो हम पाप से मुक्त हो जाएं। जितनी बीमारी भोग लेंगे उतने उसके मां हम पाप से मुक्त हो गए, तो एक प्रकार से ऋण से मुक्त हो गए। तो भगवान हमारे को शुद्ध बनाने के वास्ते ये मौका दिया है, तो ये भगवान का मंगलमय विधान है, इसको खुशी के साथ इसका उपभोग करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब मृत्यु आगे प्राप्त होती है तो पहले कोई भारी बीमारी होकर के प्राय करके रहा करती है, तो उस वक्त में जब बीमारी आती है तो मृत्यु साथ में याद आती है। मृत्यु याद आने से मन के मां थोड़ा ज्ञान होता है, विवेक होता है, ये मन में विचार होता है कि अब तुम्हारे को मरना है, इसलिए जिस प्रकार से तुम्हारा उद्धार हो, कल्याण हो, उसका अब प्रयत्न करना सही। भगवान का भजन है, ध्यान है, कोई भी एक प्रकार का साधन करना चाहिए जो तुम्हारा भविष्य का सुधार हो, तुम्हारा जन्म सफल हो जाए, ये हमारे को एक शिक्षा मिलती है, तो इसमें हमारा मंगल ही मंगल है। और ये शिक्षा मिलती है कि हमने कोई पाप किया था, उसके फलस्वरूप में भगवान ने ये रोग भेजा है, तो रोने से भी ये दूर तो होगा नहीं, तो भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके कि चित्त में प्रसन्न होना चाहिए। तो कोई भी प्रकार की विपत्ति है उसको विपत्ति नहीं मान करके संपत्ति माननी चाहिए, भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार मान करके खुश होना चाहिए। ये सब भगवान के हुक्म से ये सब आकर की विपत्ति प्राप्त हुई है, किसी हमने कोई द्वेष से ये चीज नहीं भेजी है, कोई हमारा दुश्मन हुए उसने ये कोई कांड रचवसी बात नहीं है, ये हमारे किए कर्मों का ही फल है, और भोगने से इससे हम मुक्त हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम बात है। और दुख के भोगने से उसके वहां तितिक्षा भी बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है। सदा आदमी सुखी सुख हो गए तो उसको थोड़ा दुख ही बड़ा भारी प्रतीत होता है, और ये आदत पड़ जावे तो वो दुख इतना दुख नहीं हो जाता है। तो सोचने से सब प्रकार से भी वो भगवान का मंगलमय विधान है, जिसको हम ये समझते हैं कि हमारी प्रतिकूलता के बीच के मां कि ये प्रतिकूलता कि कोई परिस्थिति प्राप्त हो गए, कोई पदार्थ प्राप्त हो गए, कोई घटना प्राप्त हो गए, कोई भी आगे के प्रतिकूल या प्राप्त हो गए प्रतिकूलता के मां, तो हमको तो अधिक और मंगल आनंद समझना चाहिए। उसके मां वो भगवान का विधान है और वो आनंद स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, बड़ी भगवान की विशेष कृपा माननी चाहिए। नहीं मानी जाती है, ये गलती है। नहीं मानकर क्या करोगे? सुवा रोने के तो उपाय नहीं है। जिस समय में मृत्यु होनी है मृत्यु होगी शरीर की, जिस समय में कष्ट प्राप्त होना कष्ट होगा ही, रोने से कोई वो कम नहीं होगा। सब कोई को होता है कर्म सुवा सुख दूर, ज्ञानी भुगते ज्ञान से मूर्ख भुगते रोए। शुभ और अशुभ कर्म का फल सब कोई को भोगना पड़ता है। ज्ञानी तो उसको ज्ञान से भुगता है, मूर्ख रो करके भुगता है। उसके रोना अधिक पानी आता है और तो एक प्रकार से कुछ लाभ होता है नहीं, बल्कि ज्यादा कष्ट होता है। तो यह बात समझ करके कि न्यायकारी जो भगवान है, दया सिंधु जो भगवान है, सबके सूर्य जो भगवान है, उसकी पद पद के मां दया देख दे करके खुश होना चाहिए। और अनुकूलता के मां जो आप दया समझते हैं, वो दया आप समझते हैं उस रूप में नहीं। आप ये समझते हैं कि मेरे पुत्र है, धन है, स्त्री है, मकान है, मेरा शरीर आरोग्य है, मेरे में बल है, बुद्धि है, विवेक है, ये सब भगवान की देन है, भगवान का दिया हुआ धन है, दिव्य भगवान की संपत्ति है, ये भगवान की इसमें मेरे पर बड़ी दया हुई है। तो ये जो हमारी मान्यता है, इसका स्वरूप दूसरा ही। हमको विवेक पूर्वक इस विषय में विचार करना चाहिए। स्त्री पुत्र धन बल बुद्धि तेज ज्ञान शक्ति जो कुछ हमारे को प्राप्त है, जो हमारे मन के अनुकूल, जिसको हम सुख मान करके सुखी हो रहे हैं और भगवान की दया समझ रहे हैं। दया तो भगवान की हम लोगों पर है, किंतु उसका असली जो रहस्य हम लोग नहीं समझे। बड़ी भारी दया है, उसका छोटा रूप मान लिया। बड़ी भारी दया यह है कि ये सब जो पदार्थ हमारे मन के अनुकूल जो भगवान ने दिए हैं, भोग के लिए नहीं दिए, आत्मा के उद्धार के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए दिए हैं, और हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसका सदुपयोग करें तो इससे हमारा कल्याण हो सकता है, और इसका दुरुपयोग करें तो हमको इसका आगे जाके के दंड मिल सकता है। सदुपयोग करना क्या कि भगवान की चीज भगवान के काम में लगा दें, ये सदुपयोग है। और दुरुपयोग ये कि उसका उपयोग नहीं लगा करके और दूसरे काम में बरतने का दुरुपयोग है। रुपया जो है हम इसका सदुपयोग करें तो इन रुपयों से हमारी मुक्ति हो सकती है, हमारा कल्याण हो सकता है, और दुरुपयोग करें तो इससे हमारे को अपना नष्ट मिलता है। इन रुपयों को हम दूसरे के कष्ट देने के काम में लगावें, या इन रुपयों को हम व्यभिचार के काम में लगावें, मदिरा पीने में लगावें, मांस खाने में लगावें, तो उसका फल हमको नरक होगा, और क्या होगा? शास्त्र के अनुसार उनका फल ऐसा नरक है। और उन रुपयों को हम अच्छे काम में लगावें, ईश्वर की भक्ति में लगावें, परोपकार के मां लगावें, सत्संग के मां लगावें, और निष्काम भाव से लगावें, और भगवान की चीज समझ करके भगवान के काम में लगावें, तो इससे हमारी आत्मा शुद्ध होकर के और इसका फल हमारे को परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार और सब विषय में समझ लो, ईश्वर ने जो हमारे को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उस बुद्धि को जो तीक्ष्ण बुद्धि है, विवेक और बुद्धि, इनको हम परमात्मा की प्राप्ति के काम में लगावें, कि भगवान का तत्व जानने के लिए लगावें इस बुद्धि को, तो उससे हमारी आत्मा उच्च कोटि को प्राप्त होती है, हमारी आत्मा का सुधार उधार हो सकता है। और उसी बुद्धि को हम लोगों के अनिष्ट काम में लगावें, कि अधिक से अधिक मनुष्य किस तरह से मर सके है, ऐसा कोई अनुभव बनावें, या और ऐसी बुद्धि लगावें कि जिससे अधिक से अधिक समझो कि एक साथ जीवों की हिंसा ज्यादा हो जाए, अधिक से अधिक मनुष्य बजक ऐसा बम बनाओ जिससे हिंदुस्तान सबको सब नष्ट हो जाए। वही बुद्धि काम है, तो उस काम में हमने बुद्धि लगाई तो हमने अपना पतन किया, उसका नरक क्या घोर नरक उसका फल होगा। इसी प्रकार से थी हमारे शरीर में जो बल है, उस बल को हम परोपकार में लगावें, उस बल को हम भगवान के भजन ध्यान में और भगवान की भक्ति में इस काम में अपने लगावें, तो उससे हमारा उससे हमारी आत्मा का सुधार उद्धार हो सकता है। और उसी बल को दूसरे जो प्राणियों से बैर करके और उनको तंग करने में और उनको कष्ट पहुंचाने में लगाना, उसी बल को, या उस बल को हम समझो कि अस्थियों के साथ में भूख करने में लगाए, तो वो हमारा बल हमारा पतन करने वाला होगा, नरक में ले जाने वाला होगा वही बल। तो इसी प्रकार से हरेक बात में समझना चाहिए कि भगवान ने जो कुछ हमारे को दिया है, हमारे मन के अनुकूल जिसको हम पुण्य का फल मानते हैं, उसे और पुण्य बढ़ाना चाहिए या उसे पाप बढ़ाना चाहिए, तो उसको अच्छे काम में लगाना चाहिए। हमारे को भगवान ने अस्थि दी है, तो उस अस्थि के द्वारा हमारी आत्मा का जिससे सुधार होकर उद्धार, उस काम में लगाना चाहिए, और उसका भी उद्धार हो। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि उस अस्थि को लेकर के हम ऐसा पाप करें जिससे उसका हमारा दोनों का ही पतन हो। संसार का हित किस में है, भगवान राजी किस बात से हो सकते हैं, ये समझ करके हम स्त्री पुरुष दोनों संसार के सेवा में लग जाने, ईश्वर की भक्ति में लग जाने, तो हमारा दोनों का ही कल्याण हो सकता है। इसी प्रकार अपने पुत्र को भी इसी काम में लगा देवें, सब का ही सब, तो जो कुछ हमारे को पदार्थ प्राप्त है उन पदार्थों के द्वारा हम चेष्टा करें तो हमारी आत्मा का सुधार होकर शीघ्र उद्धार हो सके, और यदि उसको विपरीत काम के वहां लगाए तो उसका नतीजा बुरा हो सकता है। तो ईश्वर जो कुछ हमारे लिए विधान करता है उसमें ईश्वर की बड़ी भारी दया भरी हुई है। हमारी जो समझ है, यदि विपरीत काम में लगाऊं तो हमारी समझ जो है वो ठीक नहीं है। ईश्वर ने हमको विवेक दिया है आत्मा के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। उस ईश्वर का दिया हुआ जो विवेक है उससे एक हम दुरुपयोग कर रहे हैं, तो विवेक के द्वारा हमको समझना चाहिए कि किस प्रकार से शीघ्र अपनी आत्मा का सुधार होकर के उद्धार हो सकता है। ये आपको ईश्वर ने जो विवेक दिया है, ये समझो कि अपनी आत्मा का पतन करने के लिए नहीं दिया है, किंतु इसका आप दुरुपयोग करो, विवेक का दुरुपयोग करो तो आपकी मर्जी है, आपके लिए खराबी हो। ये कहना कि भी जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसका सदुपयोग करना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि जो कुछ हमारे को दिया है भगवान ने, वो भगवान की चीज, भगवान के समर्पण कर दे, भगवान के काम में लगा देने, तो ये अच्छी बात है, ईमानदारी है, उचित है। पर उसका ठीक उपयोग नहीं करना ही बेईमानी है, अन्याय है। तो परमात्मा की प्राप्ति का बड़ा सुगम उपाय है, तो इसमें बड़ी भारी ईश्वर की दया से भरी हुई है। जिस कहो कि लड़का मर गया उसमें भी ईश्वर की दया है, उसमें तो विशेष दया है। भक्ति के सिद्धांत के अनुसार तो लड़का मेरे पास में रहता था और भगवान के पास में चला गया, तो उसका उसमें ज्यादा हित है। मेरा ये कर्तव्य था कि लड़के को सुख पहुंचाना, भगवान ने हमारे पास लड़के को भेजा, भगवान ने हमारा विश्वास कर करके कि लड़के को हमारे पास भेजा, किंतु जैसा हमको उसके साथ में व्यवहार करना चाहिए था वो नहीं किया, उसको भोग पदार्थ मान करके कि और हम अपना पतन करने लगे, तो भगवान ने सोचा कि अब इसको अपने पास बुला लो, तो तुम्हारा जो पतन होता तो तुम्हारे को बचाया और आपके पास बुला करके उसका परम हित किया, तो हमको तो आनंद मानना चाहिए कि लड़का भगवान के पास चला गया, बस बहुत ही आनंद की बात है। उसका हित तो ये हम चाहते हैं और हमारा भी उसमें हित है। यदि भगवान हमारे पास रखने में हित समझते उस लड़के का या हमारे पास हमारा, तो हमारे पास ही रखते, उसको क्यों बुलाते। तो जो कुछ भगवान करते हैं उसमें भगवान का मंगलमय विधान ही भरा हुआ है। इसी प्रकार से स्त्री मर गई तो उस विषय में ये समझना चाहिए, ये जो लालटेन है बिजली की बत्ती है और सर्प जो है पतंगे जानवर, ये उसमें उड़ उड़ करके पड़े और मरे, झोस करके मरे, तो दयालु आदमी क्या करेगा, बिजली उतार दे कि इन बिचारों को बचाओ। देखते हैं कि लालटेन जलाते हैं तो उसमें आकर के जीव पड़ते हैं, पतंगे जानवर आकर के उसमें भस्म होते हैं, तो समझदार जो आदमी होता है उनके ऊपर दया करके उस लालटेन को बुता देता है तो उनकी जान बच जाती है। तो इसी प्रकार से असली रूपी जो एक दीपक की शिखा है और उसे को भू करके के उस भोग में पड़ करके हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, भगवान इस बात को समझ करके के उसको मार डाला तो अच्छी बात ही, हम विचार के द्वारा उसका त्याग कर देते तो हमारे लिए विशेष मंगल की बात ही। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके के हम संयम से असली पुरुष रहते तो हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात है, इसीलिए भगवान ने असली मुझको दी थी, किंतु मैं उसका दुरुपयोग करने लगा तो भगवान ने सोचा भी सबका हित ही तो करना है तो इसमें दोनों का हित नहीं है तो उसको मार दिया। तो अच्छे ही बात, मन अच्छे ही काम किया। इसी तरह से थी हमारे पास समझो कि जो धन है और उसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं, भगवान ने उस धन को नष्ट कर दिया तो अच्छा ही किया, नहीं तो हम और उससे अधिक पाप करते तो उस धन का दुरुपयोग करते, इसकी अपेक्षा नष्ट हो गया तो हम दुरुपयोग से बचे। तो धन के नष्ट में भी भगवान की दया है और धन की प्राप्ति में भी भगवान की दया है, पुत्र के उत्पन्न में भी भगवान की दया है, पुत्र के मरने में भी भगवान की दया है, असली से मिलने में भी भगवान की दया है, असली के विनाश में भी भगवान की दया है। इसी प्रकार से थी सभी बातों में भगवान की दया समझनी थी, ये भगवान की दया का तत्व है, रहस्य समझ में आ जावे तो उसको हर वक्त शांति आनंद होता ही रहे, उसकी कोई सीमा ही नहीं रहे। किंतु हम भगवान की दया के तत्व को नहीं समझते, नहीं समझते हैं तो हमको ये सिद्धांत बना लेना चाहिए कि जो भी कुछ समझो कि सुख या दुख, लाभ या हानि, हम जिसको लाभ समझते हैं, हानि समझते हैं, सुख समझते हैं, दुख समझते हैं, सबको ही ये भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार है ऐसा मानना चाहिए। और हर वक्त भगवान की लीला को देख देख करके खुश होना चाहिए, भगवान तो सब ऐसी लीला कर रहे हैं, हम एक प्रकार से अपने प्रतिकूल मान कर करके अपने दुखी होकर के मरे तो ये हमारी मूर्खता है। चिंता शोक भय ये तो अपना माने हुआ है, ऐसा समझ करके हमको हरेक काम के वहां भगवान की दया का ही दिग्दर्शन करना सही। तो भगवान की बड़ी भारी हम लोगों के ऊपर दया है, अपार दया है। और ये दया का तत्व रहस्य सब भगवान की दया से समझा जाता है, और वो दया भगवान की हम लोगों के ऊपर है ही। ऐसे होते हुए भी हम